हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 17 और 18। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठा यमुः कुयोगिना नीरस्तसाम्या तिशयेन राधसा स्वधामनि भ्र मणिरंस्यते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात हूणा द्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना घसादया येनी च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत्किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायशीति यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणनशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखान् भुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय छः जिसका शीर्षक है पुरुष सूक्त की पुष्टि। श्लोक संख्या 17। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को जो कि भगवान की महिमा के विषय में ब्रह्मा जी बता रहे नारद को, तो उनको मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं
स्वदेष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपस् तपत्यन्तर्बहिः पुमा स्वदेष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपस् तपत्यन्तर्बहिः पुमान् स्वदेष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपस् तपत्यन्तर्बहिः पुमान्।
यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान के निराकार स्वरूप को भगवान के शरीर में से निकले हुए एक तेज के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं स्वदिष्ण्यम प्रतपन प्राण बहिश्च प्रतपति असौ। असौ कहते हैं सूर्य को। तो जिस तरह से सूर्य स्वदिष्ण्यम माने विकरण या प्रकाश, प्रतपन यानी विस्तार करता है, प्राणो यानी प्राण, बहिश्च बाह्य च माने भी प्रतपति यानी प्रकाश करता है असो। असो जो सूर्य होता है वो अपनी किरणों से प्रत्येक जगह पर भीतर तथा बाहर प्रकाश करता है। एवं विराजम प्रतपन, विराजम कहते हैं जो विराट भगवान का स्वरूप है, एवं माने उसी प्रकार से विराजम प्रतपन, विराजम यानी भगवान का विराट स्वरूप जो होता है उसका जो विस्तार होता है, तपति यानी जीवन प्रदान करता है, अंतस बहिर, अंतर मतलब अंदर भीतर से, बाहिर मतलब बाहर से पुमान यानी मनुष्य को। अनुवाद, सूर्य अपनी विकिरणों से का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश विस्तारित करता है, इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं।
श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। हम ध्यान से श्रील प्रभुपाद जी के इन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर भगवान के विराट रूप का या उनकी निर्विशेष पहलू का जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है स्पष्ट विवेचन हुआ है। एकदम साफ साफ बताया गया है कि आखिर वो ब्रह्म ज्योति या विराट या निर्विशेष स्वरूप क्या है और उसकी तुलना सूर्य प्रकाश के वितरण से की गई है। सूर्य का जिस तरह से प्रकाश होता है उसी प्रकार से भगवान का विराट स्वरूप है। सूर्य प्रकाश सारे ब्रह्मांडों में फैल सकता है लेकिन सूर्य प्रकाश का स्तोत्र सूर्य ग्रह या सूर्य नारायण देव जो कि उसके स्रोत हैं वही ऐसे प्रकाश का मूल आधार है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे कि भले ही सूर्य का प्रकाश जो है वो हर जगह पे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाली सूर्य प्रकाश ही है। सूर्य प्रकाश यदि कहाँ से आ रहा है तो वो सूर्य ग्रह से आ रहा है, सूर्य नारायण देव से आ रहा है। तो जो सूर्य नारायण है, सूर्य ग्रह है, वही ऐसे प्रकाश का मूल आधार है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ब्रह्म ज्योति या भगवान के निर्विशेष पहलू के आधार है। यहाँ पर साफ साफ बताया एवं विराजम प्रतपंस तपत यत अंतर बहिष्पुमान। ये जो विराट स्वरूप है वो प्रत्येक उसके अंदर से जो किरणें निकल रही हैं वो प्रत्येक जीव को प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करती हैं। और ये जो विराट स्वरूप है वो किसका है, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे साफ साफ। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति या भगवान के निर्विशेष पहलू के आधार हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 14.27 में की गई। ब्रह्मण्यो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च। तो इसमें बताया गया ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम् अर्थात ब्रह्म जो है वो मेरे ही तेज से प्रकट होता है। अतएव भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष पहलू की गौण कल्पना है। यानी विराट रूप जो है निर्विशेष पहलू की गौण कल्पना है, किंतु भगवान का मूल स्वरूप तो दो हाथों वाला अपनी शाश्वत बंसी बजाता हुआ श्याम सुंदर स्वरूप है। निर्विशेष असल भगवान का स्वरूप तो वही है जिसमें भगवान के दो हाथ हैं, वो वंशी बजाते हैं वेणुम कर्णम तमरविंद दलायताक्षम, जिनके पगड़ी में मोर पंख लगा हुआ है और बहुत ही सुंदर कमल जैसे जिनके नेत्र हैं वैजंती माला पहनते हैं टेढ़ा खड़े होते हैं घनघोर बादलों के जैसा उनका स्वरूप है। तो वास्तविक भगवान का वही श्याम सुंदर स्वरूप है। भगवान के वितरित प्रकाश की का 75% आध्यात्मिक आकाश यानी त्रिपाद विभूति में व्यक्त होता है। अब यहाँ पर जिष्णु प्रभुपाद जी बहुत ही खास बात बता रहे हैं कि भगवान के वितरित प्रकाश यानी भगवान का जो ये विराट स्वरूप का जो प्रकाश है, जो अलग अलग जीव आत्माएं हैं वो सब क्या है, वो उसका 75% जो है त्रिपाद विभूति मतलब 75% जो है वो आध्यात्मिक जगत में है और व्यक्त होता है, और शेष 25% यानी 25% जो है वो भौतिक ब्रह्मांडों के समग्र विस्तार को अलोकित करता है। आध्यात्मिक जगत में 75% और इस भौतिक जगत में सिर्फ 25%। इसकी विवेचना तथा उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 10.42 में बताया गया है, जिसमें भगवान कहते हैं अथवा बहुनायतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत। अथवा बहुनायतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, किंतु अर्जुन इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो इष्टव्याहम इदम कृत्स्नम मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांडों में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो इस तरह से भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अंतरंगा शक्ति कहलाती है और शेष 25% बहिरंगा शक्ति कहलाती है। अंतरंगा शक्ति जो भगवान के आध्यात्मिक जगत है वहाँ पर 75 और इस भौतिक जगत में 25% है। सारे जीव जो आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी हैं वे उनकी तटस्थ शक्ति कहलाते हैं। अब जितने भी जीव प्राणी हैं वो क्या हैं, भगवान की तटस्थता। 75% ऊपर है, 25% इस भौतिक जगत में है और बीच में तटस्थ शक्ति सारे जीव हैं, और उन्हें छूट मिलती है कि चाहे वे बहिरंगा शक्ति में रहें या अंतरंगा शक्ति में। जो लोग भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिधि में रहते हैं वे मुक्त आत्मा कहलाते हैं, और जो बाह्य विस्तार में रहते हैं वे बद्ध जीव कहलाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब हम यानी जीव आत्माएं तटस्थ शक्ति में जब उसे पूरी की पूरी फ्रीडम मिलती है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, तो वो अपने लिए स्वयं ही स्थान च्वाइस करते हैं। अगर वो आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वो मुक्त आत्मा कहलाएंगे, और जब तक हम जैसे जीव इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में रहेंगे तो बद्ध जीव कहलाएंगे। हम इन दोनों विस्तारों के निवासियों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं और आसानी से इस तरह इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मुक्त आत्माओं की संख्या बद्ध जीवों की तुलना में कहीं अधिक है। तो जाहिर सी बात है आध्यात्मिक जगत जो है वो 75% है और यहाँ भौतिक जगत जो 25% है, तो ये तो एकांक्षेन, भगवान ने भी कहा ये तो एकांक्षेन, मेरा एक छोटा सा अंश है, बाकी मेरा जो विस्तरिक जो भी है विस्तार जो है वो तो आध्यात्मिक जगत में है। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं इस भौतिक जगत में तो बहुत ही कम जीव है और भगवान को सदैव उन जीवों की फिक्र लगी रहती है, इसीलिए उन जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान स्वयं बारंबार अवतार लेते हैं और गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा उन्हें यह रियलाइज कराने का प्रयास करते हैं कि वो सब भी आध्यात्मिक जगत में जाएं, क्योंकि भगवान हम बद्ध जीव आत्मा को बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए दुखों में देखना नहीं चाहते। भगवान के अंदर बहुत करुणा है, इसे भगवान की इच्छा यही रहती है कि किसी न किसी प्रकार से समस्त बद्ध आत्माओं को आध्यात्मिक जगत में लेके चले, लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि इतना सरल तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान का नाम जप करना है और भगवान को प्राप्त करना है, और हम उसमें भी इतना ना ध्यान नहीं देते, भगवान के नाम को जप करने की इच्छा नहीं करते। तो इसलिए बेचारे भगवान क्या करें, चाहते हुए भी हमें अपने लोक में तब तक नहीं लेके जा सकते जब तक कि हम भौतिक आसक्ति को समाप्त करके भगवान के चरणों से प्रेम करना ना शुरू कर लें। तो ये हम सबका कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को भगवत प्रेम करने में सहायता करें, कैसे भी करके जीवों के हृदय में भगवान के प्रेम को उत्पन्न करना ही हम सबका वास्तविक लक्ष्य है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, सुमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यया। सुमृतस्याभयस्येषो मर्त्यं मन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरात्यया। शब्दार्थ, सोमृतस्य भयस् येषो, सोमन वे भगवान, अमृतस्य यानी अमरता का, अभय, अभय का मतलब है कि निर्भयता, ईश मर्त्य अन्नम, ईशो मतलब नियंता है, मर्त्यम मतलब मरणशील, अन्न मतलब सकाम कर्म का, यत अत्यगात, यत मतलब जो, अत्यगात मतलब पार कर गया है, महिमा, महिमा यानी यश, एश उनका, ततः ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यया, ततः मतलब अतेव ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन् नारद, पुरुषस्य परम पुरुष का दुरत्यया मतलब अमाप्य है। यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे हैं। भगवान जो है वो भौतिक जगत की मृत्यु और सकाम कर्मों से बिल्कुल परे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं हे ब्रह्मन्, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के यश का अनुमान लगाना कठिन है। वास्तव में जितने भी वेद हैं वो सब भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं और बताने के बाद कहते हैं नायति नायति, अर्थात भगवान के सामर्थ्य को, भगवान के यश को बताना संभव नहीं है, चाहे कितनी भी कोई प्रयास कर ले। वास्तव में भक्तों, कहीं पर फुल स्टॉप हो तो कोई बता सके कि भाई यहाँ तक महिमा है। भगवान का यश, भगवान का सौंदर्य, भगवान का वैभव जो है वो प्रतिक्षण वर्धमान है, हर क्षण में। जैसे भौतिक जगत में क्या होता है, जो भी वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं या जो हमें सुंदर लगती है, वो सब ज्ञान, वो सब धीरे 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 हमें ऐसा लगने लगता है वो क्षीण होता जाता है। लेकिन भगवान का सौंदर्य, भगवान का यश जो है वो प्रतिक्षण वर्धमान है, हर क्षण में वो बढ़ता जाता है। इसलिए अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि भगवान कितने वैभवशाली हैं, कितने यशस्वी हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान की अंतरंग शक्ति का दिव्य 75% भगवान का यश है। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अंतरंग शक्ति का दिव्य, यानी कि जो भगवान की दिव्य जगत है वहाँ पर 75% भगवान का यश है, जिसका वर्णन पद्म पुराण उत्तरखंड में हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि आध्यात्मिक आकाश भगवान की अंतरंग शक्ति का 75% है, जिसमें स्थित ग्रह भगवान की बहिरंग शक्ति से संरचित समस्त संपूर्ण ब्रह्मांडों के ग्रहों से कहीं अधिक विशाल है। अभी वहाँ पर भी अलग अलग ग्रह हैं, और जो 75% जो भगवान के आध्यात्मिक जगत में जो ग्रह हैं वो संपूर्ण ब्रह्मांडों के ग्रहों से कहीं अधिक विशाल हैं। यहाँ पर जो ग्रह हैं वो तो छोटे छोटे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में बहुत विशाल हैं। और यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में भगवान की बहिरंगा शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीजों से की गई है। यानी भौतिक जगत में जो बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड है ना, अभी देखो एक ब्रह्मांड हमारा है उसमें 14 लोक है, और इसी तरह से क्योंकि कारण दक्षिणा विष्णु जितनी भी सांसें लेते हैं ना, उसमें से जो भी ब्रह्मांड निकलते हैं वो सारे ब्रह्मांड जो हैं वो भौतिक जगत के हैं, क्योंकि कारण दक्षिणा विष्णु के सांसों से जो ब्रह्मांड निकलते वो भौतिक जगत के हैं। और वो किसकी, उसकी तुलना किससे की गई है, बाल्टी भर सरसों के बीजों से की गई है। सरसों का प्रत्येक बीज अपने में एक ब्रह्मांड जैसा है। इसमें से एक ब्रह्मांड में जिसमें हम अभी रह रहे हैं, ग्रहों की संख्या गणना कर पाना मनुष्य की शक्ति से परे है। तो भला हम उन सारे ब्रह्मांडों के विषय में कैसे सोच सकते हैं जो बाल्टी भर सरसों के बीजों के तुल्य हैं। अब यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखो एक तो ये ब्रह्मांड बिल्कुल छोटा सा निग्रहणीय 25%, आध्यात्मिक जगत जो है वो बहुत विशाल है 75%, और इसके अंदर जो ब्रह्मांड है वो भी यूँ समझो सरसों के एक बाल्टी भर के सरसों का दाल, और उसका एक सरसों का दाना यानी एक ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं उसके भी खाली पृथ्वी लोक को भी हम नहीं समझ सकते है ना, पूरी पृथ्वी को नहीं समझ सकते, पूरी पृथ्वी के एक एक कंट्री को नहीं समझ सकते है ना, जिस कंट्री में हम रहते हैं। और एक कंट्री से अगर आगे आए तो हम एक सिटी के बारे में भी पूरा ज्ञान नहीं रखते, एक सिटी से भी आगे आए तो एक गांव जिसमें हम रहते हैं उसको भी हम नहीं समझ सकते, उसके बारे में भी पूरा जानकारी नहीं रख सकते। एक सिटी से भी आगे अगर हम लोग आते हैं तो एक मोहल्ला जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी नहीं होती, उससे भी आगे एक बिल्डिंग जो है उसमें कितने लोग हैं, कैसे कैसे हैं, उनके कैसे रहते हैं, या वो भी हमें पता नहीं होता। एक बिल्डिंग को छोड़ो, हमारे जो पड़ोस वाला होता है उसमें उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं या उनके बारे में भी हमें पूरा पता नहीं होता है। पड़ोस वाले को छोड़ो, एक ही घर में चार लोग होते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें नहीं पता होता। सबका अपना अपना एक प्रॉब्लम्स होता है, अपने अपने इश्यूज़ होते हैं, वो नहीं पता। और अगर देखा जाए उससे भी आगे आएँ तो केवल हमारे अंदर क्या घट रहा है वो भी हमें नहीं पता होता। हमें अक्सर बुखार हो जाता है, बीमारी हो जाती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, तो हमें नहीं पता वो क्या है। हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर जब आता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो चेकअप करता है, फिर हमें बताता है कि भाई आपको मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये वॉल बंद हो गया, ये हो गया। तो मतलब हमारे अंदर, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कितना अच्छा बता रहे हैं कि जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, हम अभी रह रहे हैं, ग्रहों की संख्या की गणना कर पाना मुश्किल है, मनुष्य की शक्ति से परे है, तो भला उन सारे ब्रह्मांडों के विषय में कैसे सोच सकते हैं जो बाल्टी पर सरसों के बीजों के तुल्य हैं। यही नहीं, आध्यात्मिक आकाश में ग्रहों की संख्या भौतिक आकाश की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक है। ऐसे ग्रह आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे होते हैं, अतएव वे केवल विशुद्ध सत्वगुण से बने हुए होते हैं। इन लोकों में आध्यात्मिक आनंद ब्रह्मानंद का बोलबाला रहता है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे कि इस भौतिक जगत में तो केवल भौतिक आनंद होता है जो कि क्षणिक होता है, टेम्पररी होता है, वास्तव में आनंद नहीं होता, बल्कि ये तो दुख को कम करने की एक सिचुएशन है जिसको हम समझते हैं कि ये आनंद है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में ब्रह्मानंद का बोलबाला, वो आनंद जो टेम्पररी नहीं है, वो जो प्रतिक्षण बढ़ने वाला, वो आनंद है। और इनमें से प्रत्येक शाश्वत, अविनाशी तथा भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद से रहित होता है। वहाँ का आनंद जो होता है वो शाश्वत है, वो सदैव रहने वाला अविनाशी है। और भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद, यानी भौतिक जगत में जो दुख हैं उनसे बिल्कुल अलग है। आध्यात्मिक जगत में आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये दुख नहीं होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट नहीं होते हैं। इनमें से प्रत्येक ग्रह स्वतः प्रकाशित है और लाखों भौतिक सूर्यों के प्रकाश से, यदि हम अनुमान लगा सकें, कहीं अधिक चकाचौंध करने वाला है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे कि वहाँ जो कुछ भी है, प्रत्येक ग्रह स्वतः प्रकाशित है। ये भौतिक जगत तो अंधकार ही अंधकार है। अगर भगवान ने सूर्य ना बनाया होता तो हम अपने हाथ को भी ना दे सकते। ये सूर्य ना होता तो ये भौतिक जगत जो है वो हर जगह पर अंधकार ही अंधकार है। इसका वास्तविक स्वरूप अंधकारमय है ना, अज्ञानता है। ये भौतिक जगत इसमें अंधकार है, और आध्यात्मिक जगत में इस भौतिक जगत के करोड़ों लाखों सूर्यों का प्रकाश यदि हम अनुमान करें तो उससे भी कई अधिक चकाचौंध करने वाला आध्यात्मिक प्रकाश है। उन ग्रहों के निवासी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा रोग से मुक्त होते हैं, उसमें ये सब दुख नहीं होते हैं। वहाँ पर जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती, कोई बीमार नहीं होता, कोई भी बूढ़ा नहीं होता, और उन्हें हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। हमको क्या ज्ञान है, हमें तो अभी जैसे मैंने बताया कि दूसरों का छोड़ो अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वहाँ पर पूर्ण सच्चित आनंद स्वरूप है। वे सभी भगवत भावना से युक्त होते हैं और भौतिक तृष्णाओं से रहित होते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इस भौतिक जगत में हम भौतिक तृष्णा से भरपूर हैं और भगवत भावना से बिल्कुल विरक्त हैं, बिल्कुल रहित हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब भगवान के प्रेम से भरे हुए हैं और भौतिक तृष्णा उनके अंदर नहीं होती है। उन्हें उन परमेश्वर यानी नारायण की दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता। जो ऐसे वैकुंठ ग्रह के अधिष्ठाता श्री विग्रह हैं, वे मुक्त आत्मा सामवेद के गीतों के गायन में निरंतर व्यस्त रहते हैं। उनका एक ही काम है बस, भगवान से प्यार करना, भगवान की सेवा करना। प्रेम में ही सेवा के अतिरिक्त और कुछ काम नहीं होता। और वो सामवेद के शब्दों से भगवान की भगवान की आराधना करते हैं। वो सदैव व्यस्त रहते हैं निरंतर। वेदे सांग पद ग्रामोपनिषदे गायंतियं सामगा। वे सब पांचों उपनिषदों के साक्षात स्वरूप हैं। त्रिपाद विभूति जो भगवान की अंतरंगा शक्ति का 75% है, भगवान का वह धाम है जो भौतिक आकाश से बहुत परे है। किंतु जब हम एक पाद विभूति की बात करते हैं जो कि 25% होता है और भगवान की बहिरंगा शक्ति का बना हुआ होता है, वह भौतिक जगत के गोलक को द्योतिक करता है। यानी अब 25% इस भौतिक जगत में है और आध्यात्मिक जगत में 75%। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं बहिरंगा शक्ति का ये जो 25% है, बहिरंगा शक्ति का बना हुआ है, वह भौतिक जगत के गोलक को द्योतिक करता है, मतलब उसको प्रकाशित करता है। पद्म पुराण में भी यह कहा गया है कि त्रिपाद विभूति का साम्राज्य शाश्वत है किंतु पाद विभूति यानी अनित्य है। त्रिपाद मतलब 75%, पाद मतलब 25%। और ये जो 25% जो भगवान का बहिरंगा शक्ति है वो क्या है, अनित्य है। और जो 75% भगवान का आध्यात्मिक जगत है वो साम्राज्य शाश्वत है। इस दिव्य साम्राज्य में भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों के स्वरूप शाश्वत होते हैं और वे शुभ, अच्युत, आध्यात्मिक तथा चिर युवा रहते हैं। वो जो आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के सेवक हैं, मतलब कौन सा भी भगवान के साथ उनका संबंध होता है वो शाश्वत होता है। वो अच्युत हैं, कभी उनसे गलती नहीं होती। आध्यात्मिक हैं, वो उनका भौतिक शरीर नहीं होता। चिर युवा मतलब उनका शरीर कभी जीर्ण नहीं होता। दूसरे शब्दों में वहाँ पर जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग नहीं होते हैं। यह शाश्वत स्थान दिव्य आनंद, सौंदर्य तथा सब सुख से परिपूर्ण रहता है। इसी तथ्य का समर्थन श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में भी हुआ है। और इसमें दिव्य प्रकृति के अमृत, दिव्य प्रकृति को अमृत कहा गया है, जैसा कि वेदों में वर्णित है। उतामृतत्वस्येषानः, परमेश्वर अमरत्व के स्वामी हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अमर हैं और चूंकि वे अमरत्व के स्वामी हैं अतएव वे अपने भक्तों को अमरत्व प्रदान कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 8.16 में भगवान यह भी विश्वास दिलाते हैं कि जो भी उनके इस अमरत्व के धाम को जाता है वह फिर कभी भी इस त्रितापमयी मृत्युलोक में वापस नहीं आता। भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवंति महात्माना संसिद्धिम परमाम गतिम। जो मेरे धाम में एक बार आ जाता है वो त्रितापमयी अर्थात इस दुखमयी संसार मृत्युलोक में वापस उसे भटकना नहीं पड़ता। भगवान उस संसारी स्वामी की तरह नहीं है जो ना तो कभी अपने अधीनस्थों के साथ संभाव से भोग करता है, न अमर होता है, न अपने अधीनस्थों को वह अमरत्व प्रदान कर सकता है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी भौतिक जगत के स्वामियों और भगवान की तुलना करते हैं। इस भौतिक जगत के जो आप जिससे भी जिसके भी सेवक बनोगे, एक तो सबसे पहले वो अमर नहीं होते हैं, एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे, तो आपका स्वामी चेंज हो जाएगा। और उस वो कभी भी अपने अधीनस्थों को अमरत्व प्रदान नहीं कर सकते, मतलब वो स्वयं भी अमर नहीं है तो उसके जो सेवक हैं उनको कभी भी नहीं। और उसके साथ साथ समस्त जीवों के साथ वो संभव नहीं रख सकते, है ना, भगवान तो हम जिस जैसा भी भगवान के साथ प्रेम करते हैं भगवान वैसा ही प्रेम हमें देते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के, यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं समस्त जीवों के नायक परमेश्वर अपने भक्तों को अपने व्यक्तित्व के सारे गुण प्रदान कर सकते हैं जिनमें अमरत्व तथा आध्यात्मिक आनंद भी सम्मिलित है। जो भगवान के साथ प्रेम करता है उसे भगवान के सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं, भगवान की तरह आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। तो भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदयों में सदैव चिंता या भय सवार रहता है, किंतु भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता का यह गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान करते हैं। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। भगवान स्वयं अभय है और जो भगवान की शरण में आता है उसका सारा भय समाप्त हो जाता है, उसकी सारी चिंता समाप्त हो जाती है। संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय होता है, क्योंकि सारे जीव जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से सदा भयभीत रहते हैं। इस भौतिक जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है, जिससे वस्तुएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होती रहती हैं, और जो जीव मूलतः अविकार होता है वह समय के प्रभाव से परिवर्तित होने के कारण काफी दुख झेलता है। यहाँ भौतिक जगत में कोई वस्तु शाश्वत नहीं है, एक ये भौतिक जगत में जो जीव आ गया ना वो शाश्वत है। अब जीव शाश्वत होने के बावजूद भी भौतिक जगत में उसको हमेशा विकार मिलता है, अलग अलग रूप मिलता है, अलग अलग शरीर मिलता है, जिसके कारण वो काफ़ी दुखी होता है। किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित रहते हैं, अतएव यह समझना विकारी होता है। वह समय के प्रभाव से परिवर्तित होने के कारण काफ़ी दुखी होता है, किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित रहते हैं, अतएव यह समझना चाहिए कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। भौतिक जगत में तथाकथित सुख मनुष्यों के स्वकर्म का फल होता है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक और बात बता रहे कि ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत में दुख भगवान अपनी मर्जी से देते हैं, जो लोग जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार उनको फल मिलता है। कोई मनुष्य अपने कठोर श्रम के बल पर धनवान बन सकता है और ऐसे अर्जित सुख की अवधि के विषय में सदैव भय तथा आशंका बनी रहती है, किंतु भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। सुख तो आत्मा का स्वभाव है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि इस भौतिक जगत में सुखी कोई नहीं है, सुखी सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत श्रम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो अपनी सिचुएशन को आनंदित बनाता है, फैसिलिटेट प्राप्त करता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सुख को प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि सुख तो आत्मा का स्वभाव है। भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, आत्मा का स्वभाव है। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, आनंदमयोभ्यासात्, आत्मा स्वभाव से सुखमयी है। दिव्य प्रकृति में आत्मा का यह सुख सदैव वर्धित होता रहता है। इस आनंद के क्षीण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा का आनंद आध्यात्मिक जगत में प्रतिक्षण वर्धमान है। इस भौतिक जगत में हर क्षण पदम पदम यद विपता सर्वत्र दुखम पश्येत, और आध्यात्मिक जगत में पदम पदम यद आनंदम यद प्राप्यते आनंदो भवति। जब भगवान जीव के सानिध्य में आता है, या जीव जब भगवान से संबंध अपना वापस से निर्माण कर लेता है, तो फिर उस आनंद के घटने का, क्षीण होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ऐसा अमिश्रित आध्यात्मिक आनंद भौतिक ब्रह्मांड की परिधि में कहीं प्राप्य नहीं है। यहाँ तक कि जनलोक में या कि महरलोक या सत्यलोक में भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी सकाम कर्म तथा जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हुए जितने भी लोग हैं वो सब भौतिक लोकों में आध्यात्मिक आनंद नहीं है। चाहे वो जनलोक हो, तपलोक हो, महरलोक हो, सत्यलोक हो, ब्रह्म लोक में भी जाएंगे तो वहाँ पर जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म नहीं होगा। आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावृत्ति नो अर्जुन। इसलिए यहाँ पर कहा गया है दुरत्यय, या दूसरे शब्दों में भगवत धाम के आध्यात्मिक सुख की कल्पना बड़े से बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं कर सकते, जो स्वर्ग से परे स्थित लोक को प्राप्त करने के पात्र हैं। भगवत धाम की कल्पना नहीं की जा सकती, अथवा परमेश्वर इतने महान हैं कि उनकी महानता की कल्पना बड़े बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी तक नहीं कर पाते, किंतु भगवत कृपा से भगवान के अनन्य भक्त इस सुख को सचमुच प्राप्त करते हैं। तो इस भौतिक जगत में हम लोग जो भी हैं वो भगवत धाम के सुख की कल्पना नहीं करते, लेकिन ये भगवान का वचन है कि यदि हम भगवान के साथ प्रेम करेंगे, भगवान हृदय में भगवान के विषय में सोचेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ेंगे, तो भगवान कहते हैं अहम त्वम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मौसुचे। भले ही तुमने कितने ही अपराध किए हैं, मेरे आध्यात्मिक जगत को ठुकरा कर इंद्रिय तृप्ति के लिए तुम भौतिक जगत में आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम पुनः समस्त धर्मों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें भय करने की आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से भगवान जो है वो अपने भक्तों को अपने परम धाम में वापस बुला लेते हैं, जहाँ पर इतना आनंद है और कृष्ण के साथ वास्तविक संबंध है जिसका हम इस भौतिक जगत में तस्वर भी नहीं कर सकते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आप सबकी सेवा और अपनी साधना को अच्छे से कर सकूँ। हरे कृष्ण।